मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 जनवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन नौजवान साथियों का भी, और ये नौजवान साथियों की संख्या है 9, जिन्होंने एकेडमी की अभी फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इसमें एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं परवीन कुमार, आप शामली उत्तर प्रदेश से हैं, शुभम रमेश राव मोहरील, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, आकाश राघव पाल मुंबई महाराष्ट्र से हैं, लीलावती धुर्वे इंदौर मध्य प्रदेश से, शक्ति ओझा आरा बिहार से, रणधीर सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, आतिश शिंगे मोहन सिरधोन महाराष्ट्र से, मुकेश कुमार यादव तारापुर बिहार से, और रोहित शशिकांत नाड़े इकल करंजी महाराष्ट्र से। तो परवीन, शुभम, आकाश, लीलावती, शक्ति, रणधीर, आतिश, मुकेश और रोहित, आप सभी 9 नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इन 9 नौजवान साथियों के स्वागत के बाद अब मैं स्वागत करता हूं अपने इस पूरे बैच के सभी स्टूडेंट्स का, जिन्हें मैं 6th बैच कहना चाहूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अब 6th बैच के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां बकायदे डिस्प्ले कर दिया गया है कि आगे इस बैच के लिए अब एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ये बैच पूरा फुल हो चुका है। हाँ, जो नेक्स्ट बैच है जिसे हम 7th बैच कहेंगे, उस बैच की जो डेट है वो मित्रों डिक्लेयर हो चुकी है, और वह नए बैच की जो डेट है उसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वह है 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 22 अक्टूबर से 5 नवंबर यह हमारी नेक्स्ट डेट है, जिसे आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग 8 महीने बाद। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से 6th बैच के अपने सभी स्टूडेंट्स का, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से अब एक साथ स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, आप सबसे अधिक, आपसे भी अधिक मैं स्वागत करने की स्थिति में तो नहीं हूं, क्योंकि वो आएंगे नहीं, धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी के पेरेंट्स को, जिन्होंने एकेडमी पर विश्वास करके आपको 15 दिनों के लिए एकेडमी भेजने का निर्णय लिया है। तो मित्रों, जितने भी 6th बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पेरेंट्स के प्रति मैं पूरे एकेडमी की ओर से, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हें बहुत धन्यवाद भी देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एकेडमी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। और मित्रों, मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा कि खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट क्लासेस में आ रही हैं, उनके पेरेंट्स के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि गर्ल्स को कहीं भेजने का निर्णय लेना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, जिसमें दिमाग में आशंकाएं रहती हैं, अलग अलग तरह की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो उन्होंने भी यह निर्णय लिया है। तो मित्रों, एक बात मैं अब आप लोगों से कहना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, चाहे बॉयज स्टूडेंट्स हो या गर्ल्स स्टूडेंट हो, कि मैंने जो आप सबके पेरेंट्स के प्रति आभार व्यक्त किया है, इसे आप सिर्फ औपचारिकता न समझें, और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने पेरेंट्स तक एकेडमी की और मेरी और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की इस भावना को पहुंचाएं पहुंचाएं ही। अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो तुरंत उनसे जाकर के कहें जैसे ही आज आप आज का ऑडियो सुन लेते हैं, और यदि आप उनसे दूर रह रहे हैं तो मोबाइल के जरिए उन्हें इस बात की सूचना दें। मित्रों, इसे आप ट्रेनिंग का एक फिर से अगला चरण मान लें। देखिए कि यदि आप उन्हें सूचना नहीं देंगे, सूचना बाई दी अगर आप नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपका दिमाग यह सोचकर संतोष कर सकता है कि यार सर पूछेंगे तो बता देंगे कि हां हमने बता दिया था, क्योंकि सर तो हमारे पेरेंट्स से फोन करके पूछेंगे नहीं कि आपको बताया गया था या नहीं बताया गया था, और बात खत्म हो जाएगी। वास्तव में मित्रों, मैं पूछूंगा भी नहीं, कितनों से पूछूंगा, और सच बात है कि अगर आप बताएंगे तो वेरीफाई करने का मेरे पास कोई आधार भी नहीं है। तो उस लेवल पर तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मित्रों, जो व्यक्तित्व है, जो मैं आपकी चेतना चाह रहा हूं एकेडमी आने से पहले और एकेडमी में जाने के बाद, तो फिर वही चेतना काम करनी चाहिए कि आप सर से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, आप किसी भी थर्ड पर्सन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि आप खुद से कैसे झूठ बोलेंगे, खुद से कैसे झूठ बोलेंगे। और दोस्तों, यही होता है, हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सोच करके देखिए कि हमारी चेतना कैसे लगातार, हम जितने झूठ बोलते जाते हैं, हमारी चेतना बेवजह वजनी होती चली जाती, दबाव उसमें आती चली जाती है कि हमने झूठ बोला, और इसमें झूठ बोलने की जरूरत क्या है। फोन उठाइए और अपने पेरेंट्स को बता दीजिए कि सर ने ऐसे ऐसे, चूंकि आपने एकेडमी हम लोगों को भेजने का निर्णय लिया है तो बहुत हम आभार, उन्होंने आभार व्यक्त किया है, आप लोगों को धन्यवाद दिया है, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। एक छोटा सा एक्ट करके आप तीन लोगों को अच्छा लगा देंगे, इससे अच्छा काम और दूसरा क्या हो सकता है। मित्रों, पहला लेसन मैंने आपको बताया था, जो हमारे बैच में आने वाले स्टूडेंट के हैं, वो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जो ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है, .com पर अवेलेबल है, कि आप सब भरने में देरी न करें प्लीज। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा फॉलो कर, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, आप सिविल सर्विस की वाकई में चौतरफा ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहाफ पर कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता, सब आपको ही करना पड़ेगा। सिविल सर्विस की जो वैतरणी को तैर के पार करना है, उसके लिए आपको ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपके बिहाफ पर कोई आपके बगल में नाव लेके आपको पार नहीं करा सकता, इस सच्चाई को समझिए और इसकी तैयारी साइकोलॉजिकल लेवल से लेकर के एक्शन और टैलेंट के लेवल तक होनी चाहिए। तो मित्रों, अपनी चेतना को स्पष्ट बनाए रखने के लिए, और फिर आदत डालिए कि जिस काम को आप तुरंत कर सकते हैं उसे तुरंत करके अपनी चेतना को हल्का बनाने के लिए, मुक्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप तुरंत के जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आप कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए मैं आप सबको एक पॉइंट दे चुका हूं कि अपने पेरेंट्स तक मेरी और एकेडमी और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का आभार पहुंचा दें कि पापा मम्मी, आप लोगों ने जो भोपाल भेजने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए सर ने आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त किया है और धन्यवाद भी दिया। ये दोनों शब्द हैं, एक ही नहीं है, राइट। तो मित्रों, ये सूचना थी कि अब सिक्स्थ बैच हमारा पूरा हो चुका है और नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट बैच, अब जो एडमिशन शुरू हो गए हैं, उसके लिए एक और सूचना है कि अभी कुछ समय तक उन स्टूडेंट्स को 1,000 रुपीज का अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी जब आप एडमिशन लेंगे तो 1,000 का डिस्काउंट है और फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस सूचना के बाद आइए अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। हालांकि आज न्यूज एनालिसिस के लिए समय कम बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ बातें तो करेंगे ही। दोस्तों, दो खबरें महत्वपूर्ण न्यूज की थी कल के रेडियो न्यूज में। पहला, आपने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, आप पांचों राज्यों में चुनाव शुरू हो गए हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये पांच राज्य आपको मालूम है। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि इन पांचों राज्यों के चुनाव के दौरान आप पूरी चुनावी प्रक्रिया और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इन दोनों को आप ध्यान में रखें। चुनावी प्रक्रिया का मतलब है कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, जिसको हेड कर रहा है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। आप देखिए कि वो कैसे ध्यान रख रहा है, कैसे कैसे चीजों को अपॉइंट कर रहा है, कैसे ऑब्जर्वर भेज रहा है, कैसे उसने यूपी के कुछ डीएम और एसएस जो सीनियर एसपीस थे उनके तबादले कर दिए, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे केजरीवाल जी ने जब गोवा में कुछ स्टेटमेंट दिया तो किस तरह से चुनाव आयोग ने उसकी उस पर उसकी कड़ी आलोचना की और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यह है इसकी चुनावी प्रक्रिया। दूसरी जो बात है वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी ध्यान में रखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। मित्रों, जो पॉलिटिकल पार्टी, ये टॉपिक ही बकायदे मेंशन अलग से किया हुआ है आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, पॉलिटिकल पार्टीज। और अगर आप 2016 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें बकायदे पॉलिटिकल पार्टी पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, बकायदे क्वेश्चन पूछा गया है। और मजेदार बात है कि वह क्वेश्चन आपको बड़े कॉमन सेंस के आधार पर लिखना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा संकेत अगर आप एनसीईआरटी की किताबों में जाएंगे तो उसका संकेत है। राजनीतिक दल एक टॉपिक है, उसमें चार पॉइंट दिए हुए हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों के साथ जो समस्या चल रही है उसमें चार पॉइंट मेंशन किए गए हैं, उसमें से एक पॉइंट जो आंतरिक लोकतंत्र की है वह भी उसमें मेंशन है और वही एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब सिविल सर्विस का जो चैलेंज है वो ये है कि किताब में तो दे दिया है एनसीईआरटी और आपने पढ़ भी ली है, तो क्या आप उसको ज्यों का त्यों लिख कर आएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से हो जाएगा? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें आपको करंट चीजों को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, और वो आप तभी समझा सकते हैं जब आप उस पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ रहे हो। जैसे कि अभी आप देखिए, तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे यूपी को आप ले लीजिए, न्यूज में ही आपने सुना कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है, है ना, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, आपको एनालिसिस के लिए बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जिसको पिछली बार पूरी तरह से बहुमत मिला हुआ, अकेले के दम पर उसने सरकार बनाई और 5 साल शासन में रही, कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो इतने लंबे समय तक यूपी में रही, यूपी से इतने प्रधानमंत्री कांग्रेस के बने, इसका मतलब है कि अब इन दोनों पार्टियों में ये ताकत नहीं रह गई यूपी के लिए कि ये सोच सकें कि हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई ना। तो क्या अब इतनी बड़ी बड़ी और सक्षम पार्टियां भी गठबंधन करने को मजबूर हो रही हैं, और वह भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं? राष्ट्रीय स्तर पर तो बात बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि एक स्टेट में किसी एक पार्टी का दबदबा हो सकता है, दूसरे स्टेट में कहीं दूसरी पार्टी का दबदबा हो सकता है, ये हम स्टेट चुनाव में देख रहे हैं। राज्य स्तर के चुनाव में इसका मतलब है कि जो गठबंधन की जो राजनीति है वो लग रहा है कि बहुत आगे तक जाएगी। तो इस तरीके से आपको पॉलिटिकल पार्टी के करेक्टर को समझना होगा, और इसी तरीके से अब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। मित्रों, जो दूसरी खबर थी और ये रेडियो की आखिरी मतलब आखिरी खबर है जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं वो जल्लीकट्टू को लेकर के है। आपने इससे पहले अखबारों में भी देखा कि उस पर अध्यादेश भी जारी हो गया है, और कल जो इसका जब आयोजन भी हुआ तो उसमें एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी, दो लोगों के मृत्यु की खबर है और घायल लोगों की संख्या अखबार अलग बता रहे हैं, कुछ चैनल्स अलग बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि काफी लोग घायल भी हुए हैं। और सच पूछे तो जल्लीकट्टू पर के खेल पर जो नियंत्रण लगाने की जो बात भी कही जा रही है, जो याचिका भी दायर की गई है, वो इसी रूप में की गई है कि एक तो जानवर जो सांड होते हैं उनके प्रति अमानवीय व्यवहार होता है, और दूसरे इसमें इससे लोगों को भी चोट पहुंचती है, तो वो चीज वहां एक दिखाई दे रही है जो न्यूज में भी आई है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सीधे सीधे स्टेट असेंबली में इसके पक्ष में, मतलब जल्लीकट्टू के पक्ष में वो कानून लेकर के आएगी। अब देखते हैं कि बात कहां तक बढ़ती है, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, ऑलरेडी मामला है, मामला के रहते हुए अध्यादेश जारी किया गया है। तो अब एक आपको कंट्राडिक्शन यहां ये दिखाई देगा कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या संसद या विधायिका उस पर अध्यादेश ला सकती है, संवैधानिक स्थिति क्या है, ऐसे में जुडिशरी सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर मैं स्टेट असेंबली की बात कर रहा हूं तो उसको भी पार्लियामेंट ही मान करके चलिए, वो स्टेट की पार्लियामेंट है, तो दोनों में सुप्रीम कौन है? तो अब आप देखेंगे कि बटने चले कि चूंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है यानी कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वो तो संसद के पास है, संसद से बड़ी तो कोई भी शक्ति है नहीं। अब सवाल यह है कि जब मामला एक साथ इस तरह से जुडिशरी में चल रहा हो उस समय क्या किया जाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि इन सब को लेकर के आगे आर्टिकल्स मुझे लगता है कि आएंगे, लिखे जाएंगे, तो उन सबको आप ध्यान से देखिएगा और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना मत निर्धारित कीजिएगा। ये भी टॉपिक मुझे आने वाले समय के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये दो ही खबरें थी। जहां तक इस बीच की खबर है दोस्तों, वो और अखबारों में भी अखबारों की क्लिपिंग्स का सवाल है, हालांकि मैं सोमवार को आप लोगों को बहुत कम क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं, लेकिन उस ट्रेडिशन के विरुद्ध आज आपको बहुत सारी मैं क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। और वैसे भी दो दिन आपने आराम कर लिया है और आप नई ऊर्जा के साथ अब फिर से पांच दिनों के स्वागत के लिए तैयार हो गए होंगे। मित्रों, इस बीच में आपने देखा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने शपथ लिया है और शपथ के बाद उन्होंने जो भाषण दिया है पूरी दुनिया ने ध्यान से सुना, मैंने भी लाइव टेलीकास्ट उसका सुना। उसको लेकर के अब अलग अलग तरीके से चीजें हो रही हैं। मित्रों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उनके भाषण के उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपको बता सकूं कि उसमें कैसे दुनिया में एक नीतिगत परिवर्तन, एक जबरदस्त नीतिगत परिवर्तन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा। हो सकता है कि मैं कल ही बात करूं यदि कोई दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना सामने नहीं आई तो, लेकिन उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स आज अखबार में आए हैं, जो एडिटोरियल कमेंट्स अखबार में आए हैं, वो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसी के बैकग्राउंड में, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा और यह सलाह है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। आपको जो सिविल सर्विस का जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के पिछले चार साल के हम पेपर उठा करके देखें तो कोई ताज्जुब नहीं कि इस बार अमेरिका के वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत अमेरिका के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सही कई बार कही है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है, जैसा पहले महान था उतना महान बनाना है, मतलब अलग अलग तरह की शब्दावली उन्होंने प्रयोग की है। तो क्या अमेरिका पहले महान नहीं था, या था तो क्यों था, कब से था, फिर बीच में क्यों गड़बड़ हो गया, अब कैसे महान बनाया जाना, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं हमको अमेरिका के इतिहास में जाने के लिए कहते हैं कि अमेरिका के इतिहास को हम जाने समझें कि क्या रहा है। तो मित्रों, अभी फिलहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अक्टूबर में जो मेंस के एग्जाम होंगे और यहां तक कि प्री में भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अमेरिकन हिस्ट्री से आ जाए, तो एक बार आप अमेरिका के इतिहास पर जरूर नजर डाल लें और मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान से उसे पढ़ लें। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में और मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: आयुष सिंह, पवन कुमार नालंदा बिहार से, प्रताप लोहिया बाड़मेर राजस्थान से, हिमांशु गुप्ता, राजीव कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र तिवारी इलाहाबाद से, किशन मेवाड़ा पालीताना गुजरात से, राजकुमार लड्ढा फरीदाबाद हरियाणा से, पूजा सिंह जमशेदपुर, मृत्युंजय कुमार मिश्रा पातसा बिहार से, बलराम भास्कर, रोहित साहू, अभिषेक जायसवाल और तरुण कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।